खुदाई खिदमतगार आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता दीदी का हम सब एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। शिव की शक्ति है नारी, माता स्वर्ग का द्वार है। आप महिला प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, डायरेक्टर हैं मानसरोवर परिसर कार्यक्रम के लिए, सीनियर राजयोगा टीचर हैं माउंट आबू। आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की, उदयपुर कोटा डूंगरपुर में कार्य किया। 1990 में आपने पांडव भवन डिस्पेंसरी एज ए डॉक्टर अपनी सेवाएं दी। 91 में आप ग्लोबल हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में रहे। 2000 तक आपने अपनी सेवाएं दी और वर्ष 2000 से वर्ष 2007 तक दादी प्रकाशमणि जी के पर्सनल डॉक्टर और सहायक रही। आपको बचपन से ही आध्यात्म में गहरी रुचि रही। 1974 के दौरान आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई और 89 में आप संपूर्ण रीति से मानव जाति की सेवाओं के लिए समर्पित हो गई। आपने भारत के सभी प्रांतों में, विदेशों में, यूके, यूएसए, कनाडा, रशिया आदि आदि देशों में आध्यात्मिकता, सहज ज्ञान, सहज राजयोग, स्वस्थ जीवन शैली के बारे में सभी को शिक्षित किया। 2001 को जब भारत सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण को वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तब आपने अखिल भारतीय महिला आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभियान में भाग लिया और 2014 में आपने राष्ट्रीय स्तर के अभियान नारी सुरक्षा हमारी सुरक्षा का नेतृत्व किया। 2016-17 में आपने राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ सशक्त बनाओ आपने उसका नेतृत्व किया। मेडिकल विंग के द्वारा आयोजित स्वास्थ्य मेले जम्मू गुवाहाटी पठानकोट में आपने अपनी सेवाएं दी। राजयोग शिविर के साथ साथ तनाव प्रबंधन, स्वस्थ और प्रसन्न रहने की कला, मेडिटेशन एज मेडिसिन, क्रोध प्रबंधन आदि अनेक विषयों पर आपने प्रवचन दिए हैं। आपके कार्यक्रम हम पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल्स पर लाभ उठाते हैं। आपने महिलाओं की सेवा और सशक्तिकरण के लिए महिला बने महान पुस्तक का संकलन किया। नारी शक्ति त्रैमासिक पत्रिका की आप एडिटर हैं। आपको अनेक अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। आप में अनेक गुण और विशेषताएं हैं। आप सरल स्वभाव के, मधुरता, निर्माणता, नम्रता, सहयोग की भावना लिए हुए हैं। आज दीदी का विषय है दिल तख्त नशीन बनने की विधि।
ओम शांति, ओम शांति। इतनी दूर विशाखापट्टनम से, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश ही है ना, आप सब यहाँ पांडव भवन में भट्टी करने आए हैं। तो अभी तो ऐसा ही महसूस हो रहा होगा कि बाबा ने अपने दिल पर बिठा लिया। हाँ, किसको ऐसा लग रहा है? यस, हाँ। तो ऐसे तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे ही हैं, बाबा ने हमें ये श्रेष्ठ भाग्य दिया है कि जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो हम ही वो बच्चे हैं जो बाप के दिल पर राज करते हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे मेरे दिल में और मैं बच्चों के दिल में। हमारे दिल में कौन समाया है और बाबा के दिल में कौन समाए हैं? हम बच्चे। तो बाबा तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तिलकधारी, तख्तनशीन और ताजधारी। तो तिलकधारी ना, वो मंदिर में तिलक लगाते हैं वो वाले तिलकधारी नहीं, या बहने जो बिंदी लगाती हैं वो भी नहीं। कौन सा तिलक? आत्मिक स्मृति का तिलक। तो मैं आत्मा हूं, ये अकाल तख्त नशीन बनना है। माना हमारा जो तख्त है आत्मा का, वो अकाल तख्त, वो उसके स्मृति स्वरूप रहना। और फिर केवल मैं आत्मा हूं नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, वो भी बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई। कौन सी आत्मा हूं जी? बोल सकते हैं, कौन सी आत्मा हूं? महान आत्मा हूं, भाग्यशाली आत्मा हूं। केवल भाग्यशाली नहीं, पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूं। अच्छा, वो अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, भगवान की चुनी हुई विशेष रतन हूं, या विश्व कल्याणकारी हूं, विजयी रतन हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, राज ऋषि हूं। पिछले 2-3 दिन से बाबा ये टाइटल दे रहे हैं, राज ऋषि हूं। तो ये सब हम बाबा के बच्चे जो हैं, इन स्मृतियों से जितना हम स्मृति का तिलक लगाते हैं, उतनी हमारी स्थिति ऊंची और श्रेष्ठ रहती है। उतना वो खुशी और नशा हमें रहता है कि भगवान ने हमें क्या बनाया है, हम क्या बन रहे हैं। माना क्या थे, क्या हैं और अभी हम क्या बन रहे हैं। और जितना हम ये स्मृति में रहते हैं, उतना ही बाबा के दिल तख्त नशीन हम बनते हैं। तो बाबा के दिल तख्त नशीन बनना माना, जैसे कहा, बाबा के दिल पर रहना। और बाबा कहता है कि मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है, दुनिया में तो तख्त होता है, एक तख्त पर एक ही बैठेगा, लेकिन मेरा ये दिल तख्त इतना बड़ा है कि आप बच्चे तो क्या, अगर विश्व की सारी आत्माएं भी बैठना चाहें तो बैठ सकती हैं। लेकिन कौन बैठ सकता है दिल तख्त पर? हाँ, जैसे कहा, उसकी विधि क्या है, तो कौन बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकता है? हाँ, बताएंगे कौन बैठ सकता है। ऐसे तो हम दिल तख्त नशीन हैं, लेकिन कहा सच्चे दिल वाले, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। तो भगवान को कौन पसंद है? जो सच्चे दिल वाले हैं। भगवान को बहुत बुद्धिमान और बहुत विशाल दिल वाले वो पसंद नहीं। पसंद नहीं ऐसा नहीं माना, लेकिन अगर सच्ची दिल है, साफ दिल है, तो वो बाबा के दिल पर होते हैं। यूं तो दुनिया में कितने बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग हैं ना, भगवान के वो नहीं बने, तो बाबा ने उनको नहीं चुना। कौन बैठे हैं यहाँ पर सब? लेकिन वो सच्चाई सफाई भी, ब्राह्मण बनने के बाद भी हमारी जो सच्चाई सफाई है, उसकी गहराई क्या है? तो ऐसे दुनिया के हिसाब से हम सच्चे हैं, लेकिन बाबा की श्रीमद प्रमाण सच्चाई सफाई माना, जो बाबा ने कहा उस अनुसार बाबा की आज्ञा प्रमाण हम चलते हैं। और अगर उसमें कुछ भी कमी हो जाती है, मानो कोई गलती हो जाती है हमसे, तो हम बाबा को सच सच सुना देते हैं। जिसको बाबा कहता है कि रोज अपना चार्ट देना है, सोने से पहले बाबा को बता दो सारे दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो बाबा की श्रीमत के प्रमाण नहीं हुआ, तो सच सुनाएंगे तो आधा वहीं खत्म हो जाएगा, वो बाबा कहते हैं। और जो बाकी है उसके लिए भी बाबा की शक्ति मिलेगी ना, अगर हमने रियलाइज कर लिया तो रियलाइज करने से ही वो चेंज आता है, वो विधि बाबा ने इसीलिए बनाई है। और दूसरा, अंदर बाहर एक, अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, व्यवहार में जब आते हैं, ये तो बाबा के साथ हम सच्चे हैं कि हम बाबा से कुछ भी छुपाते नहीं, फिर व्यवहार में भी जब आते हैं तो आपसी व्यवहार में भी कईयों का कलयुगी व्यवहार क्या होता है ना, आज की दुनिया को क्या कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, बिना झूठ के तो दुनिया चलती ही नहीं है। तो अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, बाहर आपके साथ जो व्यवहार करते हैं अंदर में आपके लिए वैसा ही भाव रखते हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन हमारी सच्चाई सफाई क्या है, जैसा हम व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही हम हैं। फिर कई बार गलती छुपाने के लिए अपनी कोई ना कोई, मानो कोई गलती हो जाती है आपसी व्यवहार में, तो भी हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो अगर हम इसके लिए भी झूठ का सहारा लेते हैं, क्यों, मेरा नाम कहीं खराब ना हो जाए, डर किस बात का होता है, अगर गलती सामने आ जाएगी या कमी सामने आ जाएगी तो इनकी नजरों में कहीं हम कम ना हो जाएं, तो फिर अगर हम ऐसे भी झूठ का सहारा लेते हैं मानो, तो भी फिर हम बाबा के दिल पर नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं ठीक है, अपना नाम तो बचा लिया आपने, बचा भी लेते हैं, क्योंकि अगर हम कहते हैं हमने नहीं किया, हमने, हम इसका उसका भी नाम लगा देते हैं उसके लिए, तो सामने वाला भी सोचता है ठीक है, ठीक बोलते होंगे, नहीं किया होगा इन्होंने तो। लेकिन बाबा से छुपा सकते हैं, आपस में छुपा सकते हैं, लेकिन बाबा से तो कुछ छुपा नहीं है। तो इसीलिए अल्पकाल का नाम मान शान के पीछे जो सदा काल की प्राप्ति है, जो बाबा से हमें होती है कि हम बाबा के दल पर हैं और भविष्य में भी हमारी वो जमा होता है, वो उससे हम वंचित हो जाते हैं। पर कई बार कैसे झूठ बोलते हैं, कल्याण के लिए, कल्याण के लिए माना, फिर बाबा उसको झूठ नहीं कहता है। अब कई बार कई ब्राह्मण हैं, बंधन में होते हैं, पूरा परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, हम माताएं हैं उनको मधुबन नहीं आने देते हैं, या जो भी सेंटर पर नहीं जाने देते हैं, और उनको लगन इतनी, जिसको बाबा बांधेली कहता है, भले घर बैठे बाबा को याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इच्छा होती है कि मधुबन तो जाएं, साल में एक बार तो जाएं, अच्छा चलो साल में नहीं, दो साल में भी तो जाएं। तो फिर वो क्या युक्ति रचते हैं, उसको फिर युक्ति बोलते हैं। तो फिर जा रहे हैं मायके और आएंगे कहाँ, बोलेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कई कई माताएं हमें सुनाती हैं कि बहन जी हमारे जो है ना परिवार वाले छुट्टी नहीं देते, अगर हम सच बताएंगे तो लड़ाई हो जाएगी, तो हम नहीं चाहते कि किसी को हम दुख दें, तो हम फिर ऐसा करते हैं और फिर आ जाते हैं मधुबन। आप में से कभी किसी ने ऐसा किया है, देखो तो इसको क्या बोलेंगे, अभी भी उठा रहे हैं हाथ ट्रांसलेशन के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे नहीं, ये हमने, हम बाबा की श्रीमत है और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमने वो विधि अपनाई, और हमने ये भी कोशिश की कि हमारे परिवार वाले डिस्टर्ब ना हो ना, हम अपने उसमें से ही, कि अपने मायके के टाइम में से ही हमने बाबा के लिए भी वो समय निकाल दिया। तो वो समय स्थान स्थिति क्या है उसके अनुसार वो फर्क पड़ता है, कि अगर हमने कल्याण के लिए झूठ बोला तो फिर वो झूठ नहीं है, लेकिन अगर हमने स्वार्थ के लिए झूठ बोला, अपने फायदे माना गलत फायदे के लिए झूठ बोला, तो फिर उसको बाबा झूठ कहता है। और दूसरी विशेषता क्या होनी चाहिए, एक तो सच की विशेषता कि सच्चाई सफाई रहे बाबा से भी और आपसी व्यवहार में भी, और दूसरा दिल तख्त नशीन कब बनेंगे, न्यारे प्यारे होंगे, और जी संतुष्टता जी फॉलो फादर करेंगे, फॉलो फादर माना वही आज्ञाकारी बनेंगे, तो जितना हम आज्ञाकारी हैं बाबा के श्रीमत पर, अमृत वेले से रात तक हम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, जरा भी मनमत नहीं, परमत नहीं, दिनचर्या पूरी मिली हुई है ना हमें, कैसे उठना है, कैसे पढ़ना है, कैसे अपना कर्म करना है, कैसे भोजन, आज भी बाबा ने क्या बोला भोजन के लिए, क्या बोला, बिल्कुल भोग लगाए बिना हमें नहीं खाना है, ये भगवान का रिगार्ड है ना। शिव बाबा खुद आए हैं इस सृष्टि पर, भले बाबा नहीं खाते लेकिन उनके प्रति हमारा रिगार्ड है कि उनको हमें भोग लगा के ही खाना खाना है, तो ब्रह्मा भोजन ही खाना है हमको, साधारण भोजन नहीं खाना है। तो ये जो भी बाबा की हमें श्रीमत मिली हुई है उस श्रीमत पर हम चलते हैं, तो फिर हम बाबा के दिल पर हैं। क्योंकि दुनिया में भी देखो कोई आज्ञाकारी होता है तो कैसा लगता है, कोई हर बात मानता है माता पिता की, वो बच्चा कैसा लगता है माता पिता को, माता पिता को प्यारा लगता है ना, वही माता पिता के दिल पर होता है। तो बाबा के दिल पर भी कौन से बच्चे होंगे, जो बाबा की आज्ञा पर पूरा चलने वाले होंगे। ऐसे नहीं कि कुछ आज्ञा मानी कुछ आज्ञा नहीं मानी, कुछ कुछ होते हैं अलबेलापन, ये अमृत वेला दो दिन कर लिया, दो दिन छुट्टी, दो दिन मुरली सुन ली, दो दिन छुट्टी का माना, कभी सुन ली कभी नहीं सुनी, तो ऐसे को क्या कहेंगे। थोड़ा थोड़ा मन मत पर भी चलते हैं ना फिर, क्योंकि जैसा मन चाहता है वैसा वैसा भी कर लेते हैं। खाने में भी कई बार लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है हम शुद्ध सात्विक भोजन तो खाते हैं, लेकिन क्या करें, परिवार में भी जाना पड़ता है, समाज में भी जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो निभाना पड़ता है सबके साथ, तो फिर कभी कभी खा लेते हैं, हमेशा नहीं खाते। लेकिन मैं नहीं कहती आप में से कोई होंगे ऐसे, लेकिन मतलब अगर कहां भी हमारी कोई भी बाबा की जो आज्ञा है वो आज्ञा बाबा की हमारी छूटती है, तो फिर निश्चित है कि हम बाबा का वो दिल का प्यार जो हमें अनुभव, दुआएं मिलती ना, आज्ञाकारी बनने से दुआएं मिलती हैं, तो जो भी जिसकी आज्ञा का पालन करता है उसकी दुआओं का अनुभव करता है। दुनिया में भी आप किसी की आज्ञा का पालन करेंगे तो उसकी दुआएं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, है ना, दिल से वो जो उनकी खुशी होती है वो दुआओं के रूप में मिलती है। तो बाबा की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो बाबा की वो दुआएं हमें अनुभव होती रहती हैं। ऐसे ही तीसरा है, एक बाबा दूसरा ना कोई, जिनकी ये धारणा है वो बाबा के दिल तक नशीन होते हैं। क्योंकि बाबा को क्या पसंद है, कहते हैं ना आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, तो ये वफादारी है, एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरे सर्व संबंध एक के साथ हैं। और बाबा ने खुद ऑफर किया है हमें कि आप मेरे साथ सर्व संबंधों का प्यार अनुभव करो, क्योंकि अभी तक हमने दुनिया में सब संबंधों का प्यार देखा, तो वो प्यार कैसा है, थोड़े समय का सुख देने वाला है फिर दुखी देने वाला है, क्योंकि स्वार्थ का प्यार है। आज का प्यार कैसा है ना, स्वार्थ का ही प्यार है। तो इसीलिए बाबा कहता है जो आपकी जो दिल इतनी जगह बटी हुई है, थोड़ी इसमें थोड़ी इसमें थोड़ी इसमें, क्योंकि दुनिया में तो सब संबंध अलग अलग होते हैं ना, माँ अलग पिता अलग, बेटी अलग बेटा अलग भाई अलग पत्नी अलग, सब अलग अलग है, टीचर अलग गुरु अलग, तो सब में कुछ इसमें कुछ इसमें। तो इसको एक कहा, एक गीत है ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, तो इतने हजार टुकड़े हो रखे हैं, और बाबा ने क्या किया, उस टूटी हुई दिल को जोड़ दिया है, वो ऑल इन वन है, तो उस एक में ही सब समाये हुए हैं। तो हमें बाबा के साथ ही सर्व संबंध अनुभव करने हैं, बाबा ही जो मेरा संसार है ऐसा हमें अनुभव करना है। तो जब हम वो अनुभव करते हैं, उस अनुभव में रहते हैं, तो हमें महसूस होता है कि बाबा का वो प्यार सदा ही हमारे साथ है, बाबा सदा ही हमारे साथ है, बाबा से हम अलग है ही नहीं, क्योंकि सर्व संबंधों में ही रहते हैं। तो दुनिया के जो संबंध हैं वो तो फिर भी अलग हो सकते हैं, हो सकते नहीं हो सकते, जब एक्चुअली जब हमें सचमुच किसी की ज़रूरत होती है, हम मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, और मुझे ये दोस्त की ज़रूरत है, या जो भी मेरा फैमिली मेंबर है उसकी ज़रूरत है, या बेटे की ज़रूरत है, पता चलता है उस समय ही वो गायब होते हैं। जब सचमुच आपको ज़रूरत है तब वो नहीं है, या वो अपनी कोई मजबूरी बता देंगे, अरे हम ज़रूर करते लेकिन क्या करें। और ऐसे समय पर बाबा को याद करेंगे तो बाबा मदद करता है नहीं करता। तो भले ही बाबा निराकार और आकार हैं, कई बार कई भाई बहने ये भी सोचते हैं कि बाबा से सर्व संबंध, ज्ञान तो है, बाबा से सर्व संबंध है हमारे, समझ लिया ना ज्ञान तो, लेकिन अनुभव नहीं होता है, क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, कैसे अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता है, आकारी है, कैसे अनुभव करेंगे, क्या कहेंगे, अनुभव होता है नहीं होता है, किसको अनुभव होता है जी? अनुभव नहीं होता है तो यहाँ आ नहीं सकते, वो बोल रहे हैं। तो भगवान का वो प्यार है, वो हमें अनुभव होता है तभी हम बाबा के बने हैं, है ना। कौन लेकर आया हमें इस ईश्वरीय परिवार में, भगवान का प्यार ही लेकर के आया ना। तो दुनिया के प्यार में और भगवान के प्यार में हमें अंतर नजर आया, तो वो निस्वार्थ प्यार जो बाबा का प्यार हमें अनुभव होता है। तो कोई भी बात हो, माना कभी भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मन बहुत भारी हो रहा है, उलझन हो रही है, कोई तो चाहिए जिससे मैं दिल खाली करूं, जिससे मैं अपने दिल की बात करूं, है ना। ज्यादा कहाँ लगता है, ऐसे समय पर ही लगता है। तो कोई तो मेरी सखी हो, माना जो भी हो, फ्रेंड हो या कोई भी कंपेनियन हो, साथी हो, एक तो कोई होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, बाबा तो है ही है, लेकिन कोई एक तो और होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर लें, दिल को हल्का कर लें। तो वो एक अगर किसी को बनाया तो क्या होने वाला है, चाहे भाई ही बना लिया हो किसी को, भाई बहन ही, मतलब कोई गलत संबंध की बात नहीं, लेकिन कोई भी एक संबंध भी आपने किसी से बना लिया तो वो संबंध बाबा से कम हो गया। और फिर बाबा से वो जो संपूर्ण प्यार अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये कर्म का हिसाब किताब आप बनाते हो किसी भी आत्मा के साथ। अगर हम ऐसा संबंध रखते हैं, माना लेन देन का संबंध रखते हो, तो दोनों ही साइड से होता है ना फिर, कि भाई इनसे मुझे बहुत स्नेह मिलता है, अपनापन मिलता है, सहयोग मिलता है। अब कोई ना कोई आत्मा तो हमारे जीवन में ऐसी होती ही है जो हमें ये सब अनुभव कराती है, और उनसे हम थोड़ा भी लगाव झुकाव में रहते हैं, एक्स्ट्रा में रहते हैं मानो। तो बाबा कहता है ये कर्म बंधन आप बनाते हो, और इस समय कर्मातीत बनने का समय है, कर्म बंधन बनाने का समय नहीं है। तो हमें तो सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो अगर मैंने कर्म बंधन का बोझ लिया तो हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते, यानी योग में बैठेंगे बाबा की याद में, तो बाबा की याद में वो जो हल्कापन, बाबा से जो शक्ति का अनुभव होना चाहिए और बाबा का जो प्यार अनुभव होना चाहिए, वो प्यार हम नहीं अनुभव कर पाएंगे। शिकायत होगी कि उतना अच्छा योग नहीं लगता है, जैसे पहले योग लगता था, अनुभव होता था, वैसे योग अभी नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं बाबा के अलावा भी कोई है, और योग में भी वो आत्मा विघन डालती है। आप देखेंगे जिसके साथ भी आपका एक्स्ट्रा कनेक्शन होगा वो आत्मा आपको योग में याद जरूर आएगी, वो जो आ रही है वही निशानी है उसकी। तो इसीलिए बाबा के दिल तख्त नशीन बनना, माना एक बाबा ही मेरा सब कुछ है। अब ऐसा नहीं कोई हम संबंध छोड़ देंगे, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन संबंधों में रहते हुए न्यारे और प्यारे, न्यारा होकर प्यारा बनना है। तो किसी से भी एक्स्ट्रा में नहीं जाना है, प्यार है सबसे प्यार है, ऐसे नहीं इससे प्यार है इससे प्यार नहीं है, ऐसे ऐसे भी किसी को हमसे फील ना हो, लेकिन सबसे और जो हमारी परिवार है उनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, मेरा तो एक शिव बाबा, तो फिर वो जिम्मेदारी को भी मेरी जिम्मेदारी नहीं समझना है। कौन किसकी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी किसका है, मेरा नहीं है, किसका है, बाबा का है, वो भी तेरा है, तो वो जिम्मेदारी भी बाबा की जिम्मेदारी बाबा ने मुझे दी है वो समझ करके चलना है। तो उनमें जो मोह की रग होती है, परिवार में होती है ना मोह की रग होती है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तभी तो वो बाबा ने हमें पेपर बताया हुआ है, तो फिर वो मोह की रग हमारी नहीं रहेगी और वो जो ट्रस्टीशिप का भाव हमारे मन में होना चाहिए, वो ट्रस्टीशिप में हम रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी निभाएंगे, अपने कार्य करेंगे, सब कुछ करेंगे उनके लिए, बच्चों के लिए भी। हाँ, परिवार में है तो बच्चों से मोह होता है तो फिर अपेक्षा रखते हैं बच्चे को कैसे चलना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फिर वैसे नहीं चलते हैं तो फिर तंग होते हैं, हाँ ये बच्चे तो सुनते ही नहीं है, मेरा कहना ही नहीं मानते हैं, या हाँ अपने अपने आजकल की जनरेशन कैसी है। तो बाबा क्या कहता है, अगर आपने मेरा समझा तो आप परेशान होंगे, तो आप तंग होंगे, लेकिन अगर समझा ये बाबा के हैं तो फिर हाँ वो आपको आपकी शान से नीचे नहीं ला सकते, भले आप उनको गाइड करेंगे, जो भी उनको करना चाहिए वो हमारा फर्ज है वो हम उनको बताएंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे, कभी भी तंग नहीं होंगे। तो वो उस आत्मा के जो अपने कर्म हैं, अपना पार्ट है, अपना भाग्य है, तो बाबा ने हमें पूरा तीनों कालों का ज्ञान तो दिया है ना, वो समझ तो बाबा ने दी है कि वो आत्मा भी अपने कुछ पूर्व जन्म के कर्म लेकर आई है, तो हम ही उसके पूरे कंट्रोलर नहीं है, उसके कर्म भी उसके कंट्रोलर हैं कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कभी भी हम आपसी संबंध में परिवार में रहते हुए एक दूसरे से परेशान नहीं होंगे। तो ये भी कि कभी भी मेरी जिम्मेदारी नहीं समझना, अभी मेरा वहां पर बाबा है, और फिर जो मेरे संस्कार हैं ये भी समझ लेते हैं कि संस्कार किसके हैं, मेरे हैं, तो मेरे संस्कार नहीं, कौन से संस्कार मेरे संस्कार हैं अभी, हाँ जो ईश्वरीय संस्कार जो बाबा के संस्कार हैं अब वही मेरे संस्कार हैं। तो जो बाबा के दिल तख्त नशीन होते हैं वो बाबा के समान होते हैं, समीप होते हैं, उसी स्थिति वाले होंगे, तो बाबा के समान मेरे संस्कार, और हमारे से वही फीलिंग और आत्माओं को भी आएगी। वो स्थिति अगर हमारी होगी तो मेरे संस्कार, मेरे बाबा के संस्कार कौन से संस्कार हैं, कौन से संस्कार हैं जी, वो प्यार का सागर है, वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सभी सभी जो भी गुण हैं बाबा के, वो गुण बाबा दाता है, बाबा सदा ही रहम दिल है, कल्याणकारी है, हाँ ये सब हम बाबा के लिए कहते हैं। तो मैं आत्मा भी सबके लिए क्या अनुभव कराने वाली हूँ, बाप समान अनुभव कराने वाली हूँ, कि कोई भी आत्मा जो हमारे संपर्क में आती है, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जो दिल तख्त नशीन आत्माएं होंगी उनके जो भी बोल होंगे वो दूसरों के दिल को लगेंगे। यानी एक होता है अच्छे दिमाग वाले होते हैं, जैसे कहा कि सच्चे दिल नहीं है, बाप के दिल पर नहीं है लेकिन अच्छे दिमाग वाले हैं, तो अच्छा ज्ञान सुनाते हैं और अच्छे जो भी लेक्चर करते हैं, पॉइंट देते हैं, वो सब बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन उसको सब अच्छा अच्छा कहते हैं पर अच्छा बनते नहीं हैं, क्योंकि वो पावर नहीं आती है उनके अंदर। लेकिन जो बाबा के दिल तक नशीन होंगे वो जो बोलेंगे वो सामने वाले के दिल को लगेगा और वो अच्छा बनेंगे, ये पावर होती है। तो बाबा कहते हैं उनके शब्दों में वो पावर होगी और उनके संकल्प भी, माना उनकी जो भावनाएं होंगी अन्य आत्माओं के प्रति, जो उनकी भावनाएं हैं शुभ भावना ही होगी, कभी भी दूसरी भावना तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन वो शुभ भावना भी उनके दिल को लगेगी कि दिल से है। एक होता है ना, ऊपर ऊपर से हम किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं या किसी के स्टेटस के कारण, पोजीशन के कारण हम उसके लिए वो भाव रखते हैं, नहीं, वो दिल से होगा। तो वो जो भाव होंगे, बाबा कहता है कि वो ऐसे जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि एक दुनिया में दिखाते हैं ना कि तीर मारा तो तीर सहित पक्षी जो है वो नीचे गिर गया, तो संकल्प तीर की तरह होगा ना। अभी ऐसे संकल्प दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो सामने वाली आत्मा जो है वो खुद आकर के वो भाव उनके सामने प्रकट करेगी। तो जो उसने महसूस किया वो आत्मा जो है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बलिहार जाने वाली बात। और फिर बाबा ने कहा कि उनके अंदर वो अपनापन महसूस करेंगे कि ये ही हमारे अपने हैं, ये ही हमारे पूर्वज हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम महसूस करते हैं, ब्रह्मा बाबा से कोई भी आत्मा मिलती रही तो बाबा से कैसी, या दादियों से कोई भी आत्माएं मिलती रही, कभी किसी ने ऐसा फील किया कि दादियां हमारी नहीं हैं? कौन कौन दादियों से मिले हैं? अच्छा, सभी नहीं मिले हैं। अच्छा, जो नहीं मिले हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, थोड़े थोड़े नहीं मिले हैं, बाकी मेजॉरिटी मिले हैं। तो जिन्होंने भी दादियों से मिला है, किसी को ऐसा लगा कि दादी मेरी नहीं है, या बाबा को तो चलो हम में से कोई भी नहीं मिला, हम भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी अब अव्यक्त में भी हम बाबा से मिलते हैं तो हमें कैसा लगता है, बाबा मेरा है ना। तो ऐसे ही उन आत्माओं से वो फीलिंग आएगी कि ये हमारे हैं। तो इतना वो स्नेह, उनका अपनापन, हर आत्मा के प्रति वो आत्मिक भाव, वो जो श्रेष्ठ भाव होगा वो उनको वो अनुभव कराएगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि बाबा से जो एक एक बाप दूसरा ना कोई, वो जो स्थिति है, तो ये स्थिति में जैसे मैंने कहा कि मुश्किल के समय ही हमें लगता है कि कोई और होना चाहिए, लेकिन अगर हम उस समय भी बाबा को ही रखते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो लेकिन हम बाबा को ही साथ रखते हैं, तो बाबा कैसे मदद करता है। ऐसे तो सबके अनुभव होते हैं, लेकिन हमारे भी जो अनुभव हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि एक बार अभी कुछ समय पहले ही हमारा अफ्रीका में जाना हुआ, तो वहाँ पर रिट्रीट रखी हुई थी ऑल अफ्रीका, जो अपने वहाँ 40 देश हैं अफ्रीका में, अफ्रीका में ऐसे 51 देश हैं लेकिन 40 देशों में वहाँ अपने सेंटर चलते हैं। तो वहाँ एक देश में, तंजानिया भी एक देश है वहाँ पर अफ्रीका में, तंजानिया में उनकी वहाँ की राजधानी दार ए सलाम में रिट्रीट रखी थी वहाँ पर। तो हमारा जाना हुआ तो वहाँ पर वो सब भाई बहने इकट्ठे थे, करीब 250 के करीब भाई बहने आए थे सब जगह से। तो वो रिट्रीट हो गई पूरी, उसके बाद हमें साउथ अफ्रीका जाना था, और साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पे काफ़ी शहर है, उसमें 2-3 शहर हम गए, और फिर वहाँ से रिटर्न होकर के हमको आना था केन्या। केन्या एक दूसरा देश है, तीसरा, मैंने साउथ अफ्रीका एक अलग देश है, केन्या एक दूसरा देश है। तो वो जो फ्लाइट थी वो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वहाँ से, तो तंजानिया होकर के फिर वो केन्या आने वाली थी, फ्लाइट इस तरह से थी। तो ठीक है, अब वहाँ पर थोड़ा समय, 1-2 घंटे का गैप था, लेकिन हुआ ये कि जो फ्लाइट है वो लेट हो गई, तो वो जो गैप था वो नेचुरली फिर थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि टाइम पर पहुंचेगी, क्या होगा। तो लेकिन वहाँ तंजानिया में दार ए सलाम, जो जहाँ उसको उतरना था, जहाँ से दूसरी फ्लाइट लेनी थी, उसकी बजाय वो कोई भी कारण बना, क्या कारण बना हमें पता नहीं चला, उसने जो फ्लाइट थी वो उसके पास में एक आइलैंड था वहां उतार दी। आइलैंड में फ्लाइट उतार दी और फिर हम उतरने लगे, हमें लगा कि वो दार एस सलाम आ गया। तो जब उतरने लगे तो वो जो एयर होस्ट ये होती है ना उसमें, हाँ क्रू होता है फ्लाइट में, तो उसने हमसे पूछा कि आप यहाँ उतर रहे हो, आपको कहाँ उतरना है। तो ये तो बोला नहीं, ये वो जगह नहीं है, ये तो हम आइलैंड पे उतरे हुए हैं, तो अभी हम ये प्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, तो ये प्लेन जब ठीक होगा तब वहां जाएगा। तो हम वापस सीट पे आके बैठे। अब मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा बाबा ये तो ऑलरेडी ही टाइम गैप कम है कनेक्टिंग फ्लाइट में, और ये कहती है प्लेन खराब हो गया, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है उसके अंदर, उसके कारण ही वो शायद आइलैंड में उतर गया, और अब ये पता नहीं कब ठीक होगा। और रात का टाइम था, वो रात को 8 बज रहे थे उस समय। तो अगर ये प्लेन ठीक नहीं हुआ, आप कोई भरोसा नहीं ठीक हो या ना हो, तो अगर ये प्लेन ठीक नहीं हुआ तो रात को यहीं रुकना पड़ेगा। अब रात को यहाँ रुकना पड़ेगा तो उसका प्रबंध करना पड़ेगा जो भी है मतलब। तो फिर क्योंकि हम दार ए सलाम में रिट्रीट करके गए थे तो हम जानते थे वहाँ जो सेंटर है अपना और वहाँ की जो बहन है, तो उसको मैंने फ़ोन किया, तो उसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेकिन प्लेन अटक गया है यहाँ पर और कह नहीं सकते क्या होगा, तो अब मैं वेट कर रही हूँ और जैसा भी होगा फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये भी हो सकता है कि शायद, क्योंकि अगर ये फ्लाइट मिस हो गई तो दूसरी बुक करानी पड़ेगी, फिर टाइम लग सकता है उसके अंदर। और आगे आगे भी नैरोबी में, मतलब केन्या हमें मतलब नैरोबी में जाना था, तो नैरोबी में भी नेक्स्ट डे प्रोग्राम था। तो मैं बाबा को बस मन ही मन कहा, मैंने कहा बाबा अभी आप जानो कैसे ये सब टाइम पर होगा, क्योंकि अभी अपने हाथ में है नहीं, जो भी नेचर है या जो भी ये तकलीफ आई है, प्रॉब्लम आई है। तो आधा घंटा मैंने योग लगाया वहां बैठ करके, क्योंकि प्लेन में ही बैठे थे, प्लेन से बाहर तो आ नहीं सकते थे। और आधे घंटे के बाद पता चला कि वो ठीक हो गया है, प्लेन ठीक हो गया है। और हालांकि लेट हो गया था, और भी पहले से ही लेट चला था वहां से, फिर ये लेट हो गया तो गैप रह गया था। अब वहां से दार ए सलाम आना था, उसमें 20 मिनट की फ्लाइट थी वहां की, तो 20 मिनट ये और, तो टोटल टाइम बचा दूसरी फ्लाइट पकड़ने का सिर्फ 20 मिनट। माना प्लेन से उतरो, भागो और दूसरी प्लेन को पकड़ना है। तो पहुंच गया, मतलब वो पहुंच गया, और फ्लाइट उड़ने में, नेक्स्ट फ्लाइट उड़ने में सिर्फ 20 मिनट थे। तो मैंने उसको बोला, जो उनकी क्रू थी, मैंने कहा हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है और हमें जाना है। तो उसने कहा ठीक है, आप 2 मिनट वेट करो, मैं किसी को आपके साथ भेजती हूँ, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी चेक करके फिर से जाना होता है, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। तो फिर वो मेरे साथ आई और उसने पूरा सीधे सीधे, कोई लाइन नहीं, तो लाइन में जाना पड़ता है, क्यू में जाना पड़ता है, तो टाइम लगता है, तो उसने मेरे को सारे लाइन बाईपास करा दिए। और बाईपास करा के और फिर भले लगभग दौड़ना पड़ा, लेकिन वो प्लेन 5 मिनट पहले, माना वो उड़ने के टाइम से 5 मिनट पहले मैं प्लेन में चढ़ गई। तो बाबा ने मुझे किसी तरह से माना, बाबा के ऊपर छोड़ा, तो ये हमने अनुभव किया। तो ये मैं एक अनुभव सुनाया आपको, लेकिन और भी लाइफ में कई ऐसे अनुभव है कि जहां मुश्किल आती है आप बाबा के ऊपर छोड़ दो, असंभव भी संभव हो जाता है। लगभग असंभव लग रहा था मेरे को कि ये प्लेन खराब हो गया और टाइम पे ठीक होकर के मैं पहुंच जाऊंगी, मुझे लग ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि सारी रात तो या तो एयरपोर्ट पे काटनी पड़ेगी, नहीं तो फिर सेंटर जाना पड़ेगा जब तक नेक्स्ट बुकिंग हो, लेकिन बाबा ने उससे बचा दिया और टाइम पर मैं पहुंच गई। और अगले दिन जो हमारा प्रोग्राम था वो, क्योंकि बहन को भी हमने बता दिया था, वेदांति बहन जी है नैरोबी में, कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो उनको भी लगा कि पता नहीं ये कल पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन पहुंच गए। तो कहने का भाव ये है कि अटूट निश्चय होना चाहिए हमारा, जरा भी संशय का संकल्प भी ना आए कि पता नहीं बाबा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कहां भी अगर संशय में आते हैं या किसी और के बारे में हम सोचते हैं तो फिर बाबा किनारे हो जाता है, क्योंकि बाबा सोचते हैं इसने अब दूसरे को अपना सहारा बना लिया तो बनाने दो, हाँ यही इसको सहारा देंगे, क्योंकि हमने बाबा को छोड़कर दूसरे के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया। और बाबा क्या कहता है, एक बल एक भरोसा, तो एक बल एक भरोसा चाहिए, है ना। तो जितना वो बाबा के साथ हमारा पक्का संबंध है, यानी जो सर्व संबंध जिसे हम कहें कि बाबा के साथ हम अनुभव करते हैं और हर दिन अपने लिए हम ये पूरी दिनचर्या में रखें कि सारे दिन कहाँ कहाँ मुझे किस किस संबंध की जरूरत होती है और बाबा को मुझे कैसे यूज करना है। आप महसूस करेंगे आप बाबा के दिल पर ही हैं और वो बाबा की दुआएं आपके साथ सदा हैं। तो जो ऐसे आत्माएं हैं जिस वो कहेंगे बाबा के लव में लीन रहेंगी, बाबा कहते हैं ना लवलीन स्थिति, तो बाबा के प्यार में, क्योंकि प्यार महसूस करेंगी तो बाबा की वो लगन में मगन होना उनको मुश्किल नहीं लगता है और वो सहज ही माया जीत बन जाती हैं, सहज ही वो आत्माएं विघ्न जीत भी बन जाती हैं। तो फिर क्या करेंगे, बाबा के दिल तख्त नशीन बनना है, बनना है नहीं बनना है, क्या समझते हैं अभी हैं या हाँ, देखो सभी हाथ उठा रहे हाँ। तो ये विशेषताएं हमारे अंदर हों तो हम जरूर महसूस करेंगे कि हम बाबा के दिल पर, और संगम युग ही वो युग है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा ना, और किसी युग में बाबा आते नहीं, तो और किसी युग में हम ये अनुभव कर ही नहीं सकते, चाहे कितना भगवान को याद करेंगे भक्ति करेंगे, ये जो डायरेक्ट अभी हमें बाबा से अनुभव हो रहा है और किसी युग में हमें होना नहीं। तो और हमें थोड़ा ही चांस मिला है ना, अब संगम युग को तो 90 साल हो गए, हमें कितना समय मिला कितना समय मिला, कुछ साल मिले हैं ना, और अभी भी भरोसा नहीं कि हम कब तक हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो अचानक और एवर रेडी का समय है। तो जितना समय हम भगवान के साथ बिता सकते हैं, जितना उसके स्नेह में हम समाये रह सकते हैं, उतना हम पूरी तरह है ना बाबा की लगन में रहें। कोई भी दुनिया की बातें, दुनिया के संबंध या दुनिया के वैभव, मन बुद्धि को क्या आकर्षित करता है बाबा के अलावा, है ना। आज वैसे तो माया की दुनिया है, तो उस तरह के कोई भी आकर्षण हमारे मन बुद्धि को बाबा से दूर न कर पाए, ये हमें ध्यान रखना है। तो हम अपने आप को बाबा के दिल तख्त नशीन महसूस करेंगे। और बाबा कहते हैं जो बाबा तो चाहता है, जैसे जो माता पिता के प्यारे बच्चे होते हैं तो वो कभी भी उनको मिट्टी में पांव नहीं रखने देते, हमेशा कहाँ रखते हैं उनको, गोदी में रखते हैं। तो बाबा भी चाहता नहीं है कि मेरे बच्चे कोई मिट्टी में पांव रखें। तो कौन सी मिट्टी में, देह की मिट्टी में, देह भान की मिट्टी में हमें कभी नहीं आना है, लेकिन सदा ही बाबा के ना स्मृतियों की, जो भी गोदी हमें मिली है बाबा की, उन स्मृतियों की गोदी में ही हम सदा रहें। जो कहा ना, जितने हम अकाल तख्त नशीन हैं, जितना हमारा वो स्मृति का तिलक है सदा, उतना ही हम बाबा के समीप हैं और बाबा के हम समान हैं। तो हमेशा ही बाबा की उन याद के, अतिंद्रिय सुख के झूले में बाबा हमें झुलाता है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा कोशिश करते हैं कि बच्चे झूले में ही झूलें। या बाबा कहता है कोई महान आत्माएं होती हैं तो वो भी, उनको भी कभी जमीन पर पैर नहीं रखने देते, उनके लिए भी कारपेट बिछाते हैं, उनके भी कदम कहाँ होते हैं, कारपेट पर होते हैं। तो आप भी महान आत्माएं हैं, इस विश्व की कौन सी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, तो आपके भी कदम कभी भी नीचे, माना नीचे की स्थिति में नहीं होने चाहिए कि साधारण संकल्प कर रहे हैं, साधारण बोल बोल रहे हैं, साधारण कर्म कर रहे हैं, नहीं। हमारे कर्म ऐसे हों जिसको बाबा कहता है चरित्रों के रूप में उन कर्मों का गायन हो। बोल तो जैसे बताया कि ऐसी आत्माओं के बोल कैसे होंगे, तो सदा और आत्माओं को उमंग उत्साह में लाने वाले होंगे, जो भी कोई उदास है उसे खुशी में लाने वाले होंगे, है ना। किसी को उमंग उत्साह जैसे बताया, फिर बोल हिम्मत दिलाने वाले होंगे, किसी की मुश्किलों को आसान करने वाले होंगे, दुखी से सुखी बनाने वाले होंगे, हाँ। तो हमारे बोल ऐसे हों, तो अगर हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं, तो फिर वो महानता हमारे अंदर, क्योंकि बाबा के समान है ना, तो जैसे बाबा है वो महानता जो बाबा के अंदर है, जो उससे कहा फॉलो फादर करने वाले, तो ऐसे ही जैसे बाबा के बोल हमारे अंदर कितनी शक्ति भर देते हैं, कितनी खुशी भर देते हैं, भरते हैं कि नहीं भरते, हाँ। बाबा के बोल रोज मुरली सुनते हैं, क्या अनुभव होता है। बाबा बोलता है कि बाबा के जो बोल हैं वो ही यादगार, बाद में गीता के रूप में उनका शास्त्र बनता है ना, पूरे कल फिर यादगार भी चलता है उनका जीवन। पहले तो बाबा हमारा जीवन बना देता है, हम देवी देवता बन जाते हैं। तो हमारे भी बोल बाप समान हो, कर्म भी बाप समान हो, और संकल्प तो बताया ही, तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन, ये निशानियां हैं उनकी जो दिल तख्त नशीन होंगे, ठीक है। ओम शांति।
शांति। दीदी ने हम सबको बाबा के दिल में बिठा लिया ना। दीदी मन अंदर बाबा हृदय में कुर्चोपेटे सर कदा, वार अला दीदी की करताल ध्वनल कृतज्ञता। दीदी हम सब जरूर धारण करेंगे और बाबा को ये रिपोर्ट भी देंगे कि हमने धारणा किया है।
शांति।